हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मिस्टर रायजादा कुछ देर बेड पर बैठी नजरें घुमाने के बाद उसने सकुचाते हुए अर्णव को पुकारा था और अर्णव ने भी निगाहें घुमाकर गहरी नजरों से उसे देखते हुए भारी आवाज में कहा, अर्णव, अर्णव नाम है मेरा, बेहतर होगा नाम से बुलाओ। अर्णव ने बेहद संजीदगी और गंभीरता से कहा और वापस लैपटॉप पर नजरें गढ़ा दीं। धृति आंखों की पुतलियां फैलाए पहले तो अचंभित सी उसे देखती रही, फिर कुछ देर खुद में ही उलझी रही, फिर हिचकिचाते हुए उसने अर्णव का रुख किया था। कुछ बात करनी है मुझे आपसे। किससे बात करनी है धृति? कुर्सी टेबल से, बेड से या यहाँ रखे सामान से? अर्णव ने लैपटॉप पर खटखट उंगली चलाते हुए हल्के फुल्के अंदाज में सवाल किया, पर ना ही उसकी निगाहें धृति की ओर घूमी और ना ही लैपटॉप के कीबोर्ड पर चलते उसके हाथ रुके। उसकी बात सुनकर धृति चौंक गई और हैरानगी से बोली, मैं उन बेजान चीजों से क्यों बात करूंगी, मुझे आपसे बात करनी है। तो मेरा नाम है धृति, जब मुझे तुमसे बात करनी होती है तो तुम्हारा नाम लेता हूँ ना, तो अब जब तुम्हें मुझसे बात करनी है तो मेरा नाम लेकर बात करो। ये कभी मिस्टर रायजादा तो कभी मिस्टर सिंह, सुनने में कितने ऑकवर्ड लगता है। अर्णव अब धृति की ओर पलटा था और भरपूर नज़र उस पर डालते हुए कुछ खफा खफा सा नज़र आया था। लग बेहद गंभीर रहा था और नज़रें धृति पर इनायत थीं। धृति उसकी बातों का मतलब खूब समझ रही थी, पर पहले कभी नाम से बुलाया नहीं इसलिए उसे अजीब लग रहा था। पर अब मुसीबत सर पर सवार थी कि अर्णव जिद थाने बैठा था और ऐसे उसकी बात सुन नहीं रहा था। आखिर में अर्णव के आगे धृति को ही झुकना पड़ा और उसने पहले अपने निचले होंठ को दांतों तले दबाया, फिर गहरी सांस छोड़ते हुए खुद को शांत किया। अर्णव जी, मुझे आपसे बात करनी है कि आज जो गिफ्ट मुझे मिले हैं उन्हें आप अपने पास रख लें। वो आपकी पत्नी के लिए आपके परिवार ने बड़े दिल से दिए हैं और हमारा रिश्ता चंद दिनों का मेहमान है, मेरा उन पर कोई अधिकार नहीं है। धृति शुरू में थोड़ा घबराई पर फिर संभल गई और संजीदगी से पूरी बात कह दी। अर्णव ने भी खामोशी से उसके हर शब्द को सुना और संजीदगी से बोला, जब शादी मेरी तुमसे हुई, यहाँ बीवी बनकर मेरे साथ तुम रह रही हो, आज खाना तुमने बनाया था और नेक तुम्हें तुम्हारी मेहनत के लिए मिला है, तो उस पर तुम्हारा नहीं तो और किसका हक होगा धृति? अर्णव ने सर्द लहजे में किए इस सवाल से धृति को चुप लग गया। आंखों की पुतलियां फैलाए वो मूक दर्शक बनी उसे हैरान परेशान सी देखती ही रह गई। उसके किए सवाल का कोई जवाब उसे सुझा ही नहीं। अर्णव ने पल भर ठहरने के बाद ठंडी आँह भरी और आगे कहना शुरू किया, धृति, हमारा रिश्ता चंद दिनों का मेहमान है, क्या इससे ये सच बदल जाएगा कि हमारी शादी हुई है और हम पति पत्नी हैं? या ये सच बदल जाएगा कि मेरे परिवार ने तुम्हें मेरी पत्नी और अपने घर की बहू के रूप में दिल से स्वीकार कर लिया है? या फिर ये सच बदल जाएगा कि ये सभी गिफ्ट्स उन्होंने बहुत मोहब्बत और दिल से मेरी पत्नी को उसकी पहली रसोई के लिए दिया था, जो कि तुम हो? बोलो धृति, अब क्या कहना चाहोगी तुम इस बारे में? अर्णव के सवाल ने धृति को लाजवाब कर दिया। वो बस टकटकी लगाए स्तब्ध सी उसे देखती ही रह गई। सच ही तो कहा था। तभी धृति उसकी बात को काटने के लिए शब्दों को ढूंढने में नाकाम रही और उसे खामोश देखकर कुछ पल बाद अर्णव ने ही संजीदगी से आगे कहना शुरू किया, लुक धृति, मुझे माफ करना ना करना, मुझे छोड़कर जाना या मेरे साथ रहना, ये पूरी तरह से तुम्हारा फैसला होगा। मुझसे गलती हुई है जिसे सुधारने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और वक्त आने पर उसकी सजा भी भुगतने को तैयार हूँ, पर एक बात तुम अच्छे से समझ लो कि हर चीज से ऊपर एक सच ये भी है कि हमारी शादी हुई है और हम पति पत्नी हैं। मैंने तुम्हारे साथ कितना ही बेरहमी भरा व्यवहार किया हो, पर उससे ये सच नहीं बदल जाएगा कि मैं बेहद मोहब्बत करता हूँ तुमसे, और तुम वो पहली और आखिरी लड़की हो जिसको मैंने अपनी जिंदगी और दिल में इतनी खास जगह दी है। तुम मेरे साथ रहो या ना रहो, पर वो जगह हमेशा तुम्हारी ही रहेगी। तुम विश्वास करो या ना करो, पर मेरी मोहब्बत हमेशा सिर्फ तुम्हारे लिए ही रहेगी। हमारा डिवोर्स हो या ना हो, पर मेरी पत्नी सिर्फ तुम ही रहोगी। इसलिए वो सभी हक जो मेरी पत्नी के होने चाहिए हमेशा तुम्हारे ही रहेंगे। वैसे ही इन गिफ्ट्स पर भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि इसे एक्सेप्ट करती हो या कचरे में डालती हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा इसमें। बस इतना याद रखना कि ये सब चीज़ें तुम्हारे ससुराल वालों ने बहुत ही प्यार से तुम्हें दिए हैं, और किसी की मोहब्बत से दिए गिफ्ट्स का अनादर करना अच्छी बात नहीं होती। अर्णव की बातें उसके दिल से निकली थीं और धृति का दिल धड़क गया था। उसका एक एक शब्द धृति के दिल पर गहरी छाप छोड़ गया था। कभी उसके तीखे शब्दों से उसकी रूह पर जो घाव लगे थे, आज उनकी टीस कुछ कम महसूस हुई धृति को। अर्णव की उन गहरी काली स्याह आंखों में गहराई तक वो एहसास समाया था जिसे महसूस करते हुए पहली दफा धृति का दिल सिहर उठा था। कुछ लम्हे आए और गुजर गए और उनकी निगाहें एक दूसरे पर ठहरी रहीं। धृति ने अपने सीने में मौजूद दिल को जोरों से धड़कते महसूस किया तो घबरा गई और तुरंत हड़बड़ी में उस पर से नजरें हटाते हुए उसकी ओर पीठ करके लेट गई। दोनों हथेलियों को अपने सीने पर रख लिया और उलझी हुई सी गहरी गहरी सांसें लेने लगी। कानों में अर्णव के कहे शब्द अब भी गूंज रहे थे और धड़कने थी कि बेलगाम घोड़ी के तरह दौड़े ही जा रहा था, और उसकी बढ़ती स्पीड ने धृति की जान आफत में डाल दी थी। वो खुद में ही सिमटी हुई सी लेट गई और अपनी आंखों को कसके भींच लिया। दूसरे तरफ मौजूद अर्णव कुछ पल खामोशी से उसे देखता रहा, फिर ठंडी आंख भरी और लैपटॉप बंद करके साइड में रखते हुए लेट गया। नींद दोनों की आंखों में नहीं थी, पर दोनों ही सोने की नाकाम सी कोशिश कर रहे थे। अर्णव जी, ये सही नहीं हो रहा है, धृति नाराज होकर कमरे में दाखिल हुई। कई दिन बीत चुके थे पर अर्णव की फैमिली अब भी उनके साथ थी। उसने ऑफिस जाना छोड़ दिया था और सारा वक्त घर में सबके साथ बिताने लगी थी। अर्णव के परिवार ने उसे भरपूर अपनाया था। शालिनी जी की ममता, दादी दादा के किस्से, अंजलि और आकाश की यादें, सब कुछ उसे अपने जैसा लगने लगा था। वो खुद को इस परिवार में पूरी तरह शामिल महसूस करने लगी थी। लेकिन जब जब आकाश का जिक्र होता, धृति के अंदर एक टीस उठती। अपराध बोध, शर्मिंदगी और असहजता उसे बार बार भीतर से तोड़ते। वो ऊपर से मुस्कुराती, सबके साथ हंसती बोलती ताकि इन पलों को पूरी तरह जी सके, क्योंकि उसे पता था कि ये सब बस एक नाटक है जो कभी भी खत्म हो सकता है। अर्णव ने कई बार उसकी नाराजगी मिटाने की कोशिश की, पर धृति का मन अब भी उसी सर्द और बेरुखे भाव में उलझा था। दोनों सबके सामने एक आदर्श जोड़े का अभिनय करते, पर अकेले में अब भी एक दूरी थी, एक चुप्पी थी जो टूटती नहीं थी। उधर सृष्टि की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। पैसा, नौकरी, घर सब छिन चुका था। वो किसी दोस्त के घर रह रही थी और अपनी टूटी हालत के लिए धृपी को दोष देती थी। उसकी नफरत अब जुनून बन चुकी थी। सिर्फ सृष्टि ही नहीं, वृशाली और विवान भी अपनी बेइज्जती का बदला लेने को बेताब थे। वृशाली को अर्णव से ठुकराए जाने की जलन थी और विवान धृति को पाने की नाकाम कोशिश का हिसाब बराबर करना चाहता था। नीचे दादी जी ने आज़ाद आदेश सुना दिया था, कल नवरात्रि के पहले दिन घर में हवन होगा जिसमें अर्णव और धृति को पति पत्नी के रूप में साथ बैठना होगा। धृति कुछ बोल न सकी, बस उम्मीद से अर्णव की ओर देखती रही कि वो मना कर देगा, पर अर्णव ने चुपचाप हामी भर दी। गुस्से से भरी धृति उसके पीछे कमरे में चली आई। अर्णव ने जैसे ही उसकी आहट सुनी, नजरें उठाई, सामने धृति खड़ी थी, उसकी आंखों में गुस्से की आंख थी। अर्णव कुछ कहता इससे पहले ही वो फट पड़ी।
अर्णव ने ना समझी से आंखें बड़ा बड़ा करते हुए उल्टा उसी से सवाल कर दिया, क्या सही नहीं हो रहा? आपको नहीं मालूम मैं किसकी बात कर रही हूँ? धृति गुस्से में उबल रही थी।